ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज रामनवमी है और ये उत्सव इस्कान के हर मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, विशेषकर उन मंदिरों में जहां राम दरबार है। तो भगवान राम कृष्ण ही इस पृथ्वी पर आते हैं, ये तो आप सबको मालूम है। परम भगवान श्री कृष्ण ही गीता बताते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है ना, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ। तो त्रेता युग है और त्रेता युग में रावण का अत्याचार बढ़ा, तो भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। भगवान अपने चतुर्व्यूह के साथ है, चतुर्व्यूह के साथ मतलब कि लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये सब प्रकट हुए इस पृथ्वी पर हम सबके कल्याण के लिए। किसके लिए? कल्याण के लिए। भगवान के हर लीला हर युग में जो लीलाएं करते हैं उससे हम लोगों का कल्याण होता है। बहुत ही सुंदर थोड़ा सा चर्चा करेंगे भगवान के बारे में। एक श्लोक है यहाँ पे नौम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 25। अथादिश दिग्विजय भ्रांति स्त्री भुवनेश्वर आत्मान दर्शन स्वानाम पुरी मक्षत सानुग। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया कि बाहर जाकर सारे विश्व को जीतें, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रासाद के वासियों को दर्शन देते रहे, अन्य सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। ध्यान से सुनेगा, भगवान अपने किसी भक्त या सहायक को इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन रहने की अनुमति नहीं देते। ध्यान सुनेगा, भगवान रामचंद्र के छोटे भाई महल में भगवान के दर्शनों को आनंद दे रहे थे, किंतु भगवान ने आदेश दिया कि बाहर जाकर सारे विश्व को जीते, ऐसी कथा थी। और आज भी कहीं कहीं ऐसा है कि अन्य सारे राजा सम्राट की श्रेष्ठता स्वीकार करें, यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता था तो युद्ध होता था और उसे सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी होती थी, अन्यथा सम्राट के द्वारा पूरे देश का शासन चला पाना संभव नहीं हो सकता था। तो भगवान रामचंद्र ने अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देकर उनके साथ दया दिखलाई। वृंदावन में रहने वाले अनेक भोगव भक्तों ने व्रत ले रखा है कि कृष्ण भगवान अमृत का प्रचार करने के लिए वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। भगवान का कहना है कि कृष्ण भगवान अमृत सारे विश्व में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में प्रसारित होना चाहिए। हम अपने मानेंगे कि भगवान की मानेंगे? भगवान जैसा कहते हैं, है ना, हम तो ब्रजवासी हो गए हैं, हमको वृंदावन छोड़ना नहीं। अरे ऐसा थोड़ी कहता है, साक्षात बता रहा। किंतु भगवान का कहना है कि कृष्ण भगवान अमृत सारे विश्व में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में प्रसारित हो। भगवान चेतन महाप्रभु का खुला आदेश है, क्या पृथ्वी त्याचे नगर ग्राम नगराध ग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोर नाम। अतः शुद्ध भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि एक ही स्थान बंधे रह करके इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना चाहिए और यह सोच कर कृत होना चाहिए कि वह वृंदावन नहीं छोड़ेगा और एकांत में कीर्तन करेगा, तथा महान भक्त बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। भक्त को तो भगवान के आदेश को पूरा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जरा जगत तारे का कृष्ण उपदेश, अतः हर एक भक्त को चाहिए को जिस किसी से भी मिले उससे भगवान का आदेश माने को कहे और इस प्रकार उपदेश द्वारा कृष्ण मानामृत का प्रसार करे। भगवान कहते हैं सर्वधर्म प्रत्यज्य मामेकम शरण ब्रज, सारे धर्मों को त्याग कर के मेरी शरण ग्रहण करो, यही भगवान का आदेश है। हर एक को इस आदेश को मानना चाहिए क्योंकि यह विजय है। प्रत्येक श्रमिक अर्थात भक्त का धर्म है को हर एक पर इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने के लिए जो डाले। वस्तु जो कनिष्ठ अधिकारी है उपदेश नहीं देते कि भगवान उन पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं, जैसे कि भगवान ने अयोध्या में स्वयं ठहर कर लोगों को अपना दर्शन दिया। किसी को गलती से नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपने भाइयों को अयोध्या छोड़ने के लिए आज्ञा इसलिए दी कि उनके प्रजा पर विशेष कृपालु थे। भगवान हर एक पर दयालु है और वो जानते हैं कि हर व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार किस प्रकार दया की जाए। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वही शुद्ध भक्त है। स्पष्ट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग समझ गए प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि भगवान का जो आदेश है वही हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि सेवा है। तो भगवान मंदिर में बैठे हैं प्रजा को दर्शन करने के लिए, है ना। आप सुबह उठ करके दर्शन करिए, कीर्तन भजन प्रसाद लीजिए और उसके बाद क्या करिए, बाहर जाइए और प्रचार कीजिए। बाकी तो लोग भगवान तो कहीं मंदिर में लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि लोग किसका दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान का ही दर्शन करने के लिए आते हैं। तो भगवान कितने कृपालु हैं, अपने भाइयों को बोला कि आप लोग जाओ विजय करिए प्रचार करिए, अयोध्या का हमारा संदेश का प्रचार करिए और यहाँ तो हम प्रजा को दर्शन देने के लिए यहाँ विराजमान। ये संदेश बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर भगवान चाहे कृष्ण हो, राम, नरसिंह भगवान, जितने भी अवतार हुए हैं सबका कुछ न कुछ प्रयोजन है। भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं हम सबको आनंद देने के लिए, और जितनी भी लीलाएं करते हैं उस लीला को हम अगर गुणगान करते हैं तो उसमें किसका कल्याण होता है, हमारा ही कल्याण होता है। अगर भगवान आकर के ये लीलाएं नहीं करते तो हम सुबह 8 बजे किसकी कथा कहते, किसकी कथा सुनते। इसीलिए भगवान आते हैं कि हम लीला करेंगे तो भगवान के हमारे जो भक्त हैं वो हमारी लीलाओं को क्या करेंगे, श्रवण करेंगे, ऐसे उनका क्या होगा, कल्याण होगा। तो भगवान अपनी लीला करते हैं सिर्फ हम सबके कल्याण के लिए। इस पृथ्वी पर आते हैं तो अब हमारे कल्याण के लिए, और भगवान जो भी कार्य करते हैं उमर में क्या हो जाती है, लीला हो जाती है। भगवान का जो है दिनचर्या है, जैसे माखन चुरा के खाना ये तो सिखाते थे, लेकिन आज हम उसका गुणगान कर रहे हैं, करते नहीं करते। अरे भाई बड़े बड़े गायक लता मंगेशकर, अनूप जोटा वगैरह सिर्फ यही गा गा करके मैया मोरी मई नहीं माखन खाए सबको पति बन जा रहे हैं। अगर भगवान ने लीला नहीं की होते तो लोग किसका भजन गाते, किसका भजन सुनाते और सुनते, कितने कैसे कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है ना, भजन संध्या चल रही है सिर्फ यही गा गा करके। भगवान के लिए तो आम घटना है, वो तो एक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यही क्या हो जाती है, दिव्य हो जाती है। भगवान के बारे में बताया कि भगवान जब छोटे से थे चलना सीखे थे तो कभी कभी कौशल्या जी उनके पांव में पैजनिया बांध देती थी, लिखा हुआ है शास्त्र में, तो चलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, रोमझोम रोमझोम, तो गीत बन गया ठमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अगवा करके लोग आनंद उठा रहे। इससे ये समझ कि भगवान जो भी कार्य करते हैं हर लीला में लाभ किसका है, हमारा है। ये लाभ तभी मिलेगा मनुष्य को जो मनुष्य इन लीलाओं को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा। तो भगवान ने जो ये लीलाएं की, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसको सुने और उसके बाहर जाकर के सुनाएं अर्थात प्रचार करें, तभी तो लोग आकर्षित होकर के मंदिर में आएंगे। तो प्रचार ही सार है, हमें प्रचार करना चाहिए। यहां पे भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है कि भगवान की मर्यादा प्रसिद्ध है और ये अपने आचरण से स्वयं भगवान एक साधारण मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आकर के हमें अपने आचरण से शिक्षा दिया कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले यह करना चाहिए भगवान जैसा करते थे। भगवान राम के बारे में बताया गया है, आप जानते भी होंगे कि जब भगवान सुबह उड़ते थे तो सबसे पहले क्या काम करते थे बताइए, माता पिता को प्रणाम करते थे। तो क्या इस कलयुग में हम अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं बताइए, हाथ उठाइए, कौन करता है रोज, रोज करते हैं, कोई नहीं करता। हम चाहते हैं कि भगवान राम पर हमारी कृपा कर दें, अरे भाई क्यों करेंगे, अरे आप ही के लिए हमारे लिए तो भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। आचरण से व्यवहार करते कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए सिखाते हैं, हम उनके आदेश को संदेश को आचरण को अपना नहीं रहे तो कैसे सुखी रहेंगे। आज स्थिति हो गई है कि हम माता पिता को तो अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, अपनी शादी हो गई बस, अब हम क्या करें, बुढ़ा बुढ़ी को क्या करेंगे, अनाथालय से वृद्धाश्रम ढूंढेंगे है ना, और वहां डाल देंगे या मंदिर में आएंगे, प्रभु जी आपके यहां वृद्धाश्रम की योजना है, हम अपने मम्मी पापा को आपको ध्यान देना चाहते। आप जब रखना ही नहीं चाहते तो प्राण क्या करेंगे, खाक करेंगे। अरे पहले अपने माता पिता को रखो तो सही अपने घर में, प्राण तो बाद में करना। आज संसार की सबसे बड़ी यही समस्या है कि राम राज चाहते हैं लेकिन राम का आदर्श नहीं चाहते, ये समस्या है। सारी समस्या का यही जड़ है कि हम अपनी संस्कृति अपना संस्कार और सभ्यता को हम क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो इसका कष्ट कौन भुगतेगा, आप ही भुगतेगा, इसीलिए हर इंसान भुगत रहा है। खूब बढ़िया महल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं लेकिन परेशान है। परेशानी का कारण ही है कि हमारे केंद्र में भगवान नहीं है। केंद्र में ही भगवान नहीं है। कभी कभी तो लोगों को ऐसा दिखा क्या है कि सुबह आपको क्या करना चाहिए, अरे सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, है ना, और उसके बाद भगवान को स्नान कराए, खुद स्नान करिए, भगवान को स्नान कराइए, कपड़ा किस चेंज करिए, भोग लगाइए। यहाँ क्या है, उल्टा काम है, उठते ही हमें बिस्तर वाली चाय चाहिए। तो नया शिष्टाचार आ गया। अरे भाई, अरे पहले उठिए, धरती माता को प्रणाम करिए जो आपका चरण का भार सहन करती हैं। संस्कार ही बताता है कि सबसे पहले उठ करके हमें माता पिता पृथ्वी माता को प्रणाम करें कि पृथ्वी भी क्या है, माता है जो हमें अन्न दे रही है, चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, फल फूल ये कौन दे रहा है, पृथ्वी माता दे रहे हैं। तो पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो, फिर जिस माता ने आपको जन्म दिया है उसको प्रणाम करो, और उस पिता को प्रणाम करो जिसकी वजह से आप पैदा हुए हो इस संसार में। अगर माता पिता नहीं होते इस संसार में आप आते कैसे? जिस माता पिता ने आपको धरती पर लाया है आप उसे कुछ कर रहे हो, सोचने वाली बात। माता पिता को प्रणाम क्यों करना चाहिए? कुछ इस संसार में आपको लाए, अगर वो नहीं होते तो आप संसार में आते ही नहीं। महत्व समझिए, इस चीज को समझना है जो इतने तकलीफ से आपको पालन पोषण करती है, जन्म देती है, और आप जो जब वृद्धावस्था में आ गए तो आप उसको युगत समझ लेते हो। ये बहुत बड़ा निकम्मापन है, ये सही इंसान ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत सोच है, ये सोच गलत है। इसलिए कम से कम भक्तों को तो जो जो भक्ति करते हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, आप सबको तो इस चीज को हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। जान लीजिए कि आप रहते हुए अगर आपके माता पिता परेशान हैं और आप उनको आदर नहीं देते, आप कुछ भी करें आप सुखी नहीं रह सकते, इस समझ लीजिए। ये बहुत जरूरी है, पृथ्वी माता हमारी माता है, गो माता भी हमारी माता है। आज गो माता के नाम बड़ा धंधा हो रहा है, गोबर तक लोग बेच रहे हैं, वो अलग बात है। आप गो सेवा करिए, गाय की सेवा तो करिए, है ना। पृथ्वी माता, गाय माता, अपनी माता, धाता गुरु की माता, इस सबको सब माता है, और हमें इनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी माता को सम्मान नहीं दे सकता, प्रणाम नहीं कर सकता, वो गो माता खाक करेगा, है ना। पृथ्वी माता जो हमें अंदर, कहने का मतलब भगवान का जो आदर्श है उसको अपने जीवन में इंसान को क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए। भगवान राम अपने माता पिता को क्या करते थे, प्रणाम करते थे। आपको भी प्रणाम करना चाहिए, है ना, चाहे आप सास माता हो चाहे वैसी माता है। आज का क्या हो रहा है कि आप खुद सोचे, आपकी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी आपके घर में आ जाए, बेटी नहीं है, अरे वो भी बेटी है। इस संसार जानते कैसे चल रहा है, अगर आपकी बेटी है तो आपकी बेटी दूसरे घर में जाती है और दूसरे के घर की बेटी आपके घर में आती है, लेकिन बेटियां दोनों ही हैं। अपनी बेटी जब दूसरे घर में जाती है तो दूसरे का वंश चलाने में सहायक होती है, और दूसरे की बेटी जब हमारे घर में आती है तो हमारा वंश चलता है, लेकिन वंश चलना किससे चलता है, बेटी से ही चलता है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब सीता जी आई है तो कौशल्या जी कितना ख्याल करती थी, जबकि महाराजा दशरथ की भी एक बेटी थी, उनका नाम क्या था, शांता, लेकिन अपने मित्र रोमपाद को उन्होंने दे दिया था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसे कहते हैं दोस्ती, तो रोमपाद जी को देती है महाराज रोमपाद। लेकिन जब चारों भाइयों की शादी हुई, चार बेटियां उनके घर में आ गई। अब महाराज दशरथ कहते हैं कौशल्या से ये सब को इतना ख्याल रखना कि किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराजा जनक विदाई के समय पहली बार मैंने उनकी आंखों से आंसू छलकते हुए देखा था कि जब बेटी की विदाई होती है तो पिता कितना ही कठोर क्यों न हो उसके भी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। तो महाराजा जनक जो वैदेही कराते हैं उनके आंखों से भी आंसू छलकते हुए मैंने पहली बार देखा। इसलिए इन चारों बेटियों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमको पैसा चाहिए और जला देते हैं बेटियों को। हम कितने गिर चुके हैं, इंसान कितना गिर चुका हुआ है इससे पता चलता है। ऐसा इसीलिए अत्याचार हो रहा है क्योंकि हम घर घर भगवान का प्रचार नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक कृष्ण हरे कृष्ण आंदोलन के है, कृष्णवानामृत आंदोलन के, घर घर में जाकर के प्रचार करना है कि जब तक आप कृष्ण के बारे में राम के बारे में नहीं प्रचार करेंगे लोग कैसे सुधार लाएंगे। अरे सुबह उठते हो अगर माता पिता को रखो जैसे तुम टहलने जाते हो, अपने साथ माता पिताजी को लेके जाओ टहलाओ, कितना अच्छा लगेगा उनका कि देखो मेरे बेटे कितने लायक हैं, हम खुद घूम रहे हैं अब उसको भी सुबह का सैर करा रहे हैं। यहां उनका है कुत्ता टहलाएंगे लेकिन माता पिता को नहीं पूछेंगे, क्योंकि माता पिता को ले जाएंगे उनका स्टेटस डाउन हो जाए। अरे तुम कितने नालायक हो, कुत्ता टहलाने से तुम्हारा स्टेटस हाई हो रहा है, तुम्हारे माता पिता दर्द ठोकरे खा रहे हैं बेचारे क्या कर रहे हैं, है ना, तुम कुत्ता टहला रहे हो, गलत। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान तब प्रसन्न होंगे जब अपने माता पिता को आप आदर करोगे, क्योंकि भगवान राम स्वयं अपने माता पिता का आदर करते थे। यह रामनवमी उत्सव मनाने का उत्सव, यानी कि रामनवमी आए बस, अरे उनका आदर्श सुनो। आदर्श किस लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, अपने घर से स्टार्टिंग ही अगर आपकी गलत है तो दिन भर आपका अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप अपने घर में आज से अगर इतना शुरू कर दें कि हम आज से ही कल सुबह से अपने माता पिता को पृथ्वी माता का आदर करेंगे, आपका दिन अच्छा जाएगा। शुरुआत तो करो। प्रभुपाद जी से कैंपस के अंदर रहने वाले भक्तों क्या बोले कि हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए, मंगल दर्शन से, मंगल आरती से। और जिसका दिन का शुरुआत भगवान के मंगल आरती से होगी उसका मंगल नहीं होगा तो किसका होगा। इसीलिए हमें मंगल आरती आनी चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सब मंगल ही मंगल हो तो आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, भगवान ने जैसे सिखाया है शुरुआत आप ऐसे करिए। तब देखिए कि माता पिता कितने भी कुटिल न हो, यदि आप चरण छुएंगे सुबह उड़ करके उनका हृदय क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, लेकिन आप पिघला सकते हैं। इसीलिए यदि आप आनंद में रहना चाहते हैं तो भगवान राम के आदर्श को हमें अपनाना पड़ेगा। भाई के साथ क्या प्रेम होता है ये किसने दिखाया है, भगवान ने। पति पत्नी का क्या संबंध होता है इसमें राम और सीता देख सकते हैं। और नई नई शादी हो के आई है ना, भगवान राम को बन जाना पड़ा, सोचने वाली बात। कभी कुछ ही दिन हुए शादी के अब बन जाना पड़ रहा है। भगवान राम तैयार हो गए और जब जाने लगे तो सीता जी के पास जाते हैं। सीता जी ने कहा कि हे नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, तुम कैसे मुयस्सर जाओगे? क्योंकि वहां जो जंगल होता है बहुत भयानक होता है, तरह तरह के जानवर होते हैं, रास्ता भी कंकरीला और कटीला होता है, और आपके पांव ऐसे कंकरीले पृथ्वी पर कैसे चलेंगे? आपकी मां और मेरी मां सास मां को है, वे क्या कहेंगे कि मेरा कैसा दामाद है, जंगल है कि घर है? बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन सीता जी ने कहा कि ना, आपके चरणों में ही हमारा स्थान है, आपके चरण जहां चलेंगे मैं भी पीछे पीछे वहीं चलूंगी, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है और आपके दुख में हमारा दुख है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। रही बात तो आप आगे आगे चलोगे, पीछे पीछे मैं चलूंगी, जहां आप पांव रखेंगे वहीं मेरा पांव पड़ेगा, तो पहले कांटा आपको गड़ेगा, उसके बाद मैं अपना चरण रखूंगी, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहते हैं आप यहीं भी रहिए कि बहू का कर्तव्य होता है अपने सास की सेवा करना, कौशल्या की सेवा करिए, दशरथ जी हैं आपके ससुर जी उनकी सेवा करिए, लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं, पत्नी का परम कर्तव्य होता है पहले किसकी सेवा करे, अपने पति की। इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी ही चलूंगी, तैयार होंगी। फिर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण वन को क्या करते हैं, जाते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे सुख में हो पति और पति चाहे दुख में हो, हमें साथ छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। यह है पति पत्नी का संबंध, रिश्ता। कि हमें हर हाल में इस तरह से रहना चाहिए कि जहां भगवान राम वहीं पे सीता। तो ये सब आदर्श हमें अपने जीवन में क्या करना है, उतारना है, आचरण से व्यवहार करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि देखिए संसार के लोग कितने विचित्र हैं, राम राज चाहते हैं लेकिन राम का जो आदर्श है, चरित्र है, संदेश है, उसको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहिए। आप आनंद तब आएगा, राम राज का झलक आपको मिलेगी, अपने घर में ही मिलेगी, अब जहां आप रहते वहीं मिलेगा, यदि आप भगवान के आचरण को क्या करेंगे, अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, उनके संदेश को अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे। ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। आज रामनवमी के दिन हम सबको यही भगवान राम से प्रार्थना करें कि जिस तरह से जो आपका संदेश है, हे प्रभु कृपा करे कि मैं आपके संदेश को आत्मसात कर सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। आप भक्ति की देखा, राम की चर्चा हो, हनुमान जी की चर्चा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी देखा जाए तो बानर रूप में थे, बानर रूप में, पशु उनका था, बानर उनका पशु उनका था, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेकर के और सेवा करके अपने को कितना महान बना लिया कि आज हनुमान जी क्या हो गए, अमर हो गए, सिर्फ भगवान का नाम लेकर के। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु का नाम लेकर के आज वो हमारे बीच क्या है, अमर है। और हम इंसान होकर के भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, धिक्कार है ऐसे मनुष्य। इसी हमारे भ्रष्टाचार कहते हैं कि मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नए भजिया जानिया सुनिया बीस खान, कि मनुष्य ने प्राप्त करके यदि आप भगवान का भजन नहीं करते तो आप जहर पी रहे हो। एक हमारा कर्तव्य है कि यही संदेश हम जाकर के घर घर में क्या करें, प्रचार करें, तब लोगों में सुधार आएगा। अगर हम सच्चे दिल से क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो हनुमान जी का देखिए, प्रभुपाद जी उनको बताए हैं कि दास श्रोमणी, जब दास की बात आती है तो किसका नाम आता है, हनुमान जी का। हमेशा आप राम दरबार में देखेंगे कि हनुमान जी का नेत्र हमेशा भगवान के चरण में ही रहता है, ऐसे हनुमान जी भगवान के शिव शक्ति इतने प्रिय कि जब सीता जी का हरण हो गया था, एक प्रसंग सुनाएंगे, सीता जी का जब हरण हो गया था तो उनकी तलाश करने के लिए 18 पद बानर बानर ही बानर चारों दिशा में क्या है ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन दृश्य देखिए, आप सोचिए कि कैसी प्रभु की लय है, सीता एक ढूंढने के लिए 18 पद बानर चारों दिशाओं में जा रहे हैं, जब सब चले गए एक ग्रुप जो अंगद उसके लीडर थे, कैप्टन थे, वो ग्रुप रह गया था। लाइन में से खड़े थे पहले अंगद जामन फिर हनुमान जी, ऐसे पूरा ग्रुप खड़ा था। तो भगवान राम ने क्या किया, किसको बुलाया, किसको बुलाया, हनुमान जी को बुलाया। और हनुमान जी को बुला करके भगवान ने क्या किया, अपने उंगली से अंगूठी निकाली और किसको दिया, हनुमान जी। आप खुद सोचे हनुमान जी को क्यों दिया, क्योंकि भगवान राम के त्रिका लग और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन जाएगा सीता के पास, एकमात्र हनुमान जी जाएंगे। और ये बड़ा विश्वास है, जब भगवान का विश्वास किसी भक्त के ऊपर होता है तभी कृपा भी होती है। तो आप भगवान का विश्वास जीते, दिल जीतिए, एक विश्वास किसने जीता, हनुमान जी ने। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास प्रभु के विश्वास हो गया कि यही हमारे शुद्ध भक्त हैं और यही सीता तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे। और देखो अंगूठी एक ही थी, उसकी डुप्लीकेट नहीं बनाई जा सकती थी इतनी कि जितने बानर उतनी अंगूठियां बांट दी जाए, कोई भी जाए, कोई रिस्क नहीं। भगवान को 100% क्लियर था कि वहां कौन जाएगा, हनुमान जी जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास जब किसी भक्त के पर आ जाए तो वो अमर नहीं होगा तो कौन होगा, आप सोचिए। इसे शिक्षा ग्रहण कीजिए इस संदेश से। और हनुमान जी वो अंगूठी लेकर के जय श्री राम का नाम लेकर के अश्वन योजन जमुन क्रॉस करके, खुद सोचिए किसी शक्ति से, प्रभु की शक्ति से। जब हनुमान जी वहां गए लंका, जब क्रॉस कर गए लंका के में प्रवेश करने लगे तो एक राक्षसनी थी जिसका नाम लंकिनी था। लंकिनी प्रमुख द्वार पर थी, बिना लंकिनी से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लंकिनी ने रोक दिया कि तुम बानर नहीं जा सकते अंदर। हनुमान जी बड़े ही प्रेम से कहा कि देखो बहुत सुंदर लंका नगरी है, अभी तक तुम चंदन से ऊपर से देख रहे थे, लेकिन इतनी सुंदर लंका है, मेरी इच्छा हो गई, ललक हो गई देखने की। तुम बस जिस तरह से मैं देखने के लिए आया हूं, देखने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। का ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बिना परमिशन के तुम जा ही नहीं सकते, तुम्हें नहीं जानने देंगे। इतना तक एक झापड़ मारा हनुमान जी खींच के। राक्षस होते हैं उनको कोई साधारण बांस, एक झापड़ मारा लंकिनी ने। जैसे ही एक झापड़ मारा है तो हनुमान जी ने क्या किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसने जब झापड़ मारा तब हनुमान जी ने क्या एक घूंसा उसको मारा, लेकिन हनुमान जी का एक घूंसा उसका जो अज्ञान की ग्रंथि क्या कर दिया, खोल दिया, वो ज्ञान में आ गई, उसकी अज्ञानता दूर हो गई। वो जैसे ही उठी हाथ जोड़ने लगी, अब मुझे याद आया ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम किसी बानर के मारने से विचलित हो जाए तो समझ जाना को भगवान का दूत होगा और सारे लंका का क्या होगा, विनाश हो जाएगा, रावण की मृत्यु निकट आएगी। अब मेरा दिमाग खुल गया कि हे हनुमान जी प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, इससे आप नगर में क्या करिए आदर के साथ प्रवेश कीजिए। इससे क्या पता चलता है कि जब तक आदमी माया का घूसा नहीं खाता उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। तो सब लोग क्या है, अज्ञानता में जकड़े हुए हैं लंकिनी की तरह। तो भक्तों के जाके अकल खोलनी चाहिए, है ना। तब उसका कहेगा कहे प्रभु जी आइए बैठिए घर में, क्या सेवा कर सकते हैं, निकालिए पर्ची। तब होगा, उनका अकल खोना पड़ता है, दिमाग खोना पड़ता है। नहीं सब निशाचर प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं बड़े बड़े महलों में। हनुमान जी ने इसी लंका को जलाया कि लंका जो है जानते 4 करोड़ चांदी के घर थे। कितना, 4 करोड़ चांदी के महल। यहां तो लोग ईंट पत्थर का संगमरमर का बना लेते हैं तो सीना तान के चलते बहुत बड़ा पैलेस है, खाक पैलेस है। रावण के पास 4 करोड़ मकान चांदी के थे, 4 करोड़ ही मकान किसके थे, सोने के थे, 9 लाख मकान तांबे के थे। यहां तो तांबा की लोटा खरीदनी नानी मर जाती है। महल बनाने का तो सप्लाई सुझे जानते 1 खरब 26 करोड़ 15 लाख मकान थे। अब पूरी रात भर इन मकानों में हनुमान जी क्या करे, सीता जी की तलाश की। हनुमान जी कितने बलवान हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। हनुमान जी क्यों प्रिय हैं, उन्होंने काम नहीं सोचा कि आपको सोचे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था कि हनुमान जी जब समुद्र क्रॉस जब क्रॉस किए थे और जब लैंड किए थे त्रिकुट पर्वत पर जब उतरे थे तो शाम हो गई थी और हनुमान जी जो है रात्रि का इंतजार कर रहे थे। ये सारी लीला जो है रात भर में ही किया, रात भर में ही उन्होंने सारी तलाश की, आप जान जी। और सुबह होते होते वो सीता जी तक पहुंच गए थे और उसके बाद जो दिन की घटना हुई, अशोक वाटिका उजाड़ना, राक्षसों को मारना, वो तो दिन की घटना है। और शाम तक गंगा जला करके हनुमान जी वापस चले गए। सिर्फ एक दिन एक रात में इतना बड़ा जो काम करे और वो प्रभु के चरणों में नहीं रहेगा सदैव, हमारा प्रभु नहीं। आप चाहते हैं कि प्रभु आप पर कृपा करें तो आपको हनुमान जी की तरह क्या बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। सेवक सही जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करने में रुचि रखता है। दास लिखने से आप दास नहीं बनते, लिखते दास हैं और बनते बास हैं। दास दास कैसे शिकार की जाती है, तो इन लीलाओं से हमें कितना संघर्ष और शिक्षा मिलता है कि थोड़ा सा सत्संग लंकनी को दिया हनुमान जी ने और क्या बन गई भक्ति बन गई और उपदेश देना शुरू कर दिया कि हे राम, जिस पर राम की कृपा हो जाती है उसके लिए जहर अमृत हो जाता है। एक दो शांति कम दे रहा था, लंकनी दे रही थी। वो कहती है कि हे हनुमान, जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उसके लिए विष क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है और समुद्र गोखुर के समान हो जाता है, क्रास कर देता है। तो राम की कृपा हनुमान जी की, तो इसलिए जब आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हम लोग दास हैं तो दास श्रमण हमारे कौन है, हनुमान जी। तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हनुमान जी, जिस तरह से आप प्रभु का नाम लेकर के उनके चरणों में सदैव के लग गए, मुझे भी कृपा कर दिए कि मेरे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ पड़े और नाम उनका लेकर के हम उनकी सेवा में लगे। यहां क्या है, जितनी बूंदी नहीं उतनी समस्या लेके खड़े हो जाते हैं। मांगेगी नहीं हनुमान जी से कि भक्ति हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, मेरा बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, मेरी अगर नौकरी नहीं लग रही नौकरी, दुनिया भर की समस्याएं लिस्ट लेकर खड़े हो जाएंगे। कोई नहीं मांगेगा कि हनुमान जी मुझे क्या कर दीजिए, भक्ति दे दीजिए। तो जब प्रभु के द्वार पे जाइए, हनुमान जी के द्वार पे जाइए, तो क्या मांगिए, भक्ति मांगिए कि अगर आप भक्ति करेंगे तो रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। आप भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। ये हमारे जो बैठे भक्त बैठे हुए हैं, इनको प्रसाद की चिंता है, बिल्कुल चिंता नहीं है। ये सुबह 3:30 बजे उठ करके 9 बजे तक कीर्तन भजन करते रहते हैं, जैसे प्रवचन खत्म हुआ सीधा प्रसाद वहां में जाएंगे, इन्हें चिंता नहीं है। ये सीधा कहां जाएंगे, प्रसाद वहां में जाएंगे और प्रसाद पाएंगे, अपने सेवा में लग जाएंगे। शाम को भी चिंता नहीं है, दोपहर चिंता नहीं है, है ना, क्योंकि किसकी शरण में है, प्रभु की शरण में। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर गया था, इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले जीके वन में, तो छोटे से घर में, जैसे यहां पे पहले राधा राधिका में रहते थे, ऐसे एक घर में राधा पार्षद जी थे। जब मैं पहली बार गया वहां पे, किसी भक्त ने मुझे बुलाया था, क्योंकि भक्त मिलता है तभी द्वार खुलता है भगवान का, ऐसा समझ। तो जब मैं गया तो वहां प्रभुपाद जी का प्रवचन चल रहा था, वीडियो कैसेट चल रहा था, संडे का दिन था तो VCR से प्रवचन चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद बैठ करके आज सब लेक्चर दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात प्रभावित थी यही बात, उसमें प्रभुपाद जी बोलते प्रवचन में कि सबके मालिक कौन है, कृष्ण है, परम भगवान श्री कृष्ण है, इस सारे यूनिवर्स के मालिक हैं। फिर आपको नौकर बनना है, दास बनना है, तो उसका दास बनिए जो सबका मालिक है, परम कृष्ण का। एक बात हमारे दिमाग में आ गई, क्योंकि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उस समय, एक फैक्ट्री पंजाबी बाग के बिल्कुल पास मूर्ति निगर थी, नजरगढ़ रोड पे, मैं उसका असिस्टेंट केमिस्ट था और सुपरवाइजर था कंपनी का, लेकिन साथ साथ मैं रेडियो में प्रोग्राम दिया करता था, राइटर था, कहानी कविता लिखा करता था, सरिता मुक्ता कादंबनी जितनी लीडिंग मैगजीन हिंदी का, और रेडियो में प्रोग्राम दिया करता था, उस समय की बात है। तो मेरे दिमाग में तुरंत जो हमारा सीएमडी था कंपनी का, चेयरमैन इमरजिंग डायरेक्टर, तुरंत मुझे वो याद आ गया कि देखो हमारी कंपनी का इतना बड़ा सीएमडी, वो भी हर मंगलवार को कनॉट प्लेस के हनुमान जी के मंदिर जाता है, कभी कभी तिरुपति बालाजी जाता है, कभी वृंदावन जाता है। तुरंत मेरा दिमाग यही सच है, क्योंकि भगवान से ज्यादा कोई बड़ा मालिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के यहां सबसे बड़े धनवान है, क्योंकि लक्ष्मीपति हैं। इसलिए भगवान दरबार में कौन पति आता है, कहता है भगवान अरबपति बना दीजिए, अरबपति आएगा खरबपति बना दीजिए, भिखारी आएगा बोला लखपति बना दीजिए। अर्थात हर इंसान भगवान के पास आके मांगता है, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान क्या है, लक्ष्मीपति है। जिनके पति ही लक्ष्मी हो, लक्ष्मी जी के पति जो हो, लक्ष्मी जिनकी अर्धांगिनी हो, उनको किसी चीज कमी हो सकती नहीं हो सकती। इसीलिए अगर हमें आनंद चाहिए तो हम किस किस सेवक बने, प्रभु के। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई थी कि बात सच्चा है, और आज कोई फैक्ट्री का मालिक देखो हम भक्त बन गए हैं, है ना। अभी यही की फैक्ट्री बेच करके गुड़गांव बहुत बड़ी फैक्ट्री बना दी है, और जानते हैं जब पालिका बाजार आप लोग जाते हो वहां पर अंडरग्राउंड कार पार्किंग भी है ना, ये उसका बनाया हुआ है, बहुत बड़े बिल्डर, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। दूरदर्शन का जो मंडी हाउस में ऑफिस है, पूरा दूरदर्शन का बिल्डिंग उनका बनाया हुआ है, बस साधारण नहीं था। उस समय उसके पास टोयोटा गाड़ी थी आप समझे, और मैंने उसको क्या किया, भक्त बना दिया। अब मैं जब जाता हूं तो वही सठानी पैर छूती है, हरि बोल प्रभु जी बोलती है वही सठानी। तो वक्त गुजरते देर नहीं लगती, वही रेडियो स्टेशन के जो हमारे डायरेक्टर थे, पहली बार रिकॉर्डिंग किए थे, अब रिटायर हो गए हैं, उनको मैं मंदिर बुलाता हूं, क्योंकि जब शुरू शुरू दिया था तो मैं सुप्रीम कोर्ट में सर्विस करता था, 2 साल सुप्रीम कोर्ट इंडिया काम किया, जितने वकील जानकार थे उस समय के मैं सब जाकर के मेंबर बना दिया। सोचने वाली बात थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपोर्टिंग कंपनी में कनेक्टर था, क्योंकि मैं भी टीवी स्टार बनना चाहता था, क्योंकि रेडियो स्टार था ही, उनका टीवी स्टार बन जाए। और जो सूचना प्रसारण मंत्री थे एचके भगत, उनका मैं भाषण लिखा करता था स्पीच, और जब सूचना प्रसारण मंत्री बन गए तो कहे कि पांडे तुम रेडियो आर्टिस्ट हो, अब मैं तुमको टीवी स्टार बना देता हूँ। लेकिन हम किसके सेवक बन गए, जो पूरे यूनिवर्स के स्टार हैं, परम भगवान श्री कृष्ण। आज वही लोग, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हमारे दोस्त हों, चाहे एनएसटी के लोग हों, है ना, सब जहां के तहां हैं, और आज हम यहां पे। सोचने वाली बात यह है, प्रभु की शरण में आने का प्रभाव। एक कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। आप खुद सोचिए इस बात को, है ना, कि अगर यदि आप सही भी आनंद चाहते हैं तो आपको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। आप भगवान की शरण जाइए, भगवान राम तो मर्यादा पुरुष होते हैं, रामनवमी है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो आदर्श प्रस्तुत किया है, इस संसार को दिया है, उसका अगर कुछ कुण भी अगर हमारे जीवन में आत्मसात हो जाएगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। और सच बड़ा है प्रेम और दूसरों को आदर देना। भगवान का अगर सबसे बड़ा आदर्श है, भगवान सबको क्या करते थे, सम्मान देते थे, अपने से बड़ों को सम्मान देना, ये भगवान राम से सीखी। भगवान बड़ों को तो सम्मान देते ही देते थे, यहां तक कि जो उनकी प्रजा थी उनको भी कितना सम्मान देते थे। उत्तरकांड में बताया गया है कि जब भगवान राजा के रूप में आए, राम राज की जब स्थापना हुई, जो खुद राजा बने, तो अपनी प्रजा के बीच जब निकलते थे तो प्रजा प्रणाम करे उसके पहले भगवान प्रणाम कर लेते थे। इन्हें इंतजार करते थे, मैं तो राजा हूं, एक प्रजा है, प्रजा का कर्तव्य होता है छोटे का कि बड़े को प्रणाम करे, तो बड़ा इंतजार करता रहा, एक कभी नहीं सोचा, क्या सोचा, जैसे कोई दिखाई दिया भगवान स्वयं प्रणाम करते थे। अक्रोध, गीता में भगवान कहते हैं नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। विभीषण भी यही बताते हैं रावण से कि हे रावण, काम क्रोध और लोभ ये तीनों क्या है, नरक के द्वार हैं। विभीषण भी बताते हैं, हनुमान जी भी बताते हैं कि हमें क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए। क्रोध कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, हमें किससे सीखना है, भगवान हनुमान जी सीखना चाहिए, भगवान राम सीखना चाहिए। एक प्रसंग आता है श्वेत बंध रामेश्वर का, जब समुद्र के किनारे पूरी सेना पहुंच गई तब भीषण और सुग्रीव और हनुमान जी, सुग्रीव और हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि बताइए कि समुद्र को कैसे, सबसे बड़ी अड़चन इस वर्तमान में क्या है, इस समुद्र है। हनुमान जी कहा मैं तो जा सकता हूं, अंदर भी जा सकते हैं, नल नील द्वित पांच सात बाणों का नाम लिया ये जा सकते हैं, लेकिन हमारी जितनी बाणी सेना है ये सब जाना चाहती है, तो ऐसा कौन सा उपाय है जैसे कि सारी सेना चली जाए। तो विभीषण कहे ये बहुत आसान है, अरे भगवान राम अगर समुद्र से रास्ता मान ले, क्योंकि बड़ा एहसान है उस सागर का, क्योंकि जो भगवान राम के वंशज हैं महाराजा सागर, उन्हीं के नाम से इसका नाम सागर पर है, उन्होंने खुदाई की थी, 60,000 उनके पुत्र ने खुदाई कर समुद्र बनाया था, तो अगर राम रास्ता मांगेंगे तो रिश्ता याद करके वो रास्ता दे देगा। भीष्म ने अच्छा सलाह दिया, लेकिन समुद्र था कि मानता है नहीं। तीन दिन बीत गए है ना, लेकिन वो रास्ता प्रकट ही नहीं हुआ। तो देखिए भगवान राम के पास, लक्ष्मण के पास जब एक प्रस्ताव लेके गए, क्योंकि पहले तो सुग्रीव विभीषण हनुमान जी ने एक विचार विमर्श किया, तो जब डिसीजन लिया तो इसको एक्टिवेट करने किसके पास गए, भगवान राम के पास। राम को प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, तो बड़ी अच्छी बात है, क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम जो ठहरे, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा था, वो चाहते थे अग्निबाण निकालिए रास्ता निकाल लीजिए, लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि हाँ ठीक है। तो भगवान राम तीन दिन तक, में तीन दिन तक जो है, एक दिन सुग्रीव की वजह से, सुग्रीव विराजित थे तो एक दिन इनकी तरफ से प्रार्थना करना है, एक दिन जो है विभीषण की तरफ से, और तीसरा दिन मेरी तरफ से, क्योंकि हम तीनों की इच्छा है कि लक्ष्मण को छोड़कर, इसीलिए तीन दिन ही भगवान कहे तीन दिन जो है, एक एक दिन तीनों लक्ष्मण प्रार्थना करें। लेकिन जब तीन दिन काम नहीं हुआ तो चौथा दिन किसका आया, लक्ष्मण जी का। भगवान राम ने खुद बोला कि लक्ष्मण अब आपकी बारी है, अब आप कब कह के, पहले तो हम तीनों का विचार था और सफल नहीं हुआ, लेकिन चौथा विचार आपका है, तुम पहले दिन बोले थे है ना, अब धनुष बाण लाओ है ना। वहां पे भगवान जो बात कहते हैं हम भक्तों को सुनना चाहिए, बहुत बड़ा संदेश भगवान राम कहते हैं। एक कलयुग का प्रभाव तो देखिए, एक दुनिया कितनी विचित्र है संसार में, कि जो धैर्य पुरुष होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होता है, जिनके अंदर विनम्रता होती है, सत्यता होती है, उसको लोग कमजोर समझते हैं। इस समुद्र मैं इसको विनम्रता से सरलता से प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे निर्बल समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है। दुनिया कितनी विचित्र है कि जो आदमी जितने दुष्ट होता है, अहंकारी होता है, निर्लज होता है ना, लोग उसको सम्मान देते हैं। एक कलयुग है, लोग उसको सम्मान देते हैं, जो साधारण है उसको कर, भगवान राम ने बोला, इसलिए इसको हमें सबक सिखाना है। भगवान राम ने सिर्फ क्रोधावास किया, उन्होंने बस धनुष को जो टंकार थे ना, जो डोरी थी उसको खींचा, छोड़ दिया, टंकार किया, इतने में तहलका मच गया, हलचल भूकंप जैसा आ गया, इतना जोर से आवाज निकली। और उसके बाद भगवान ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र उठाया, खींचा, छोड़ा नहीं, सिर्फ रखने से ही समुद्र प्रकट हो गया। जानते हैं ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि जानता था कि अगर हम ब्राह्मण का वेश धरकर नहीं निकलेंगे तो मार डालेंगे, क्योंकि भगवान जब ब्राह्मण को देखते हैं तो भगवान शीतल हो जाते हैं, उनका क्रोध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि भगवान आते ही इस पृथ्वी पर ब्राह्मण और गौओं की सुरक्षा करने के लिए। सिर्फ ब्राह्मण के वेश में ये समुद्र निकला तो भगवान बात छोड़े नहीं, भगवान कुछ बोलते हैं वो खुद ही बोलने लगा कि बिल्कुल रास्ता क्लियर रहेगा, हम पूरा सहयोग दें, आपके दल में दो बानर हैं, नल और नील, ये बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, इनकी कला है कि ये जब पत्थर छोड़ते हैं तो तैरने लगते हैं, क्योंकि नल और नील बचपन बड़े नटखट थे, बानर वैसे ही नटखट होते हैं, चाहे बचपन में चाहे बूढ़े थे जवान, हम नटखट उनका स्वभाव होता है। तो कहें कि जिन ऋषि के कुटिया में लोग रहते थे पत्थरों में चाहते थे, एक दिन वो अपने शालिग्राम को भोग लगाकर चले गए, इन नल नील ने क्या किया, शालिग्राम को एक पत्थर समझ करके सरोवर में फेंक दिया, जल में फेंक दिया। तो जब ऋषि जी आए तो देखा तो शालिग्राम में थे, तो कहे ये नल नील जो है बानर बहुत पत्थर मचाते हैं, आज से अगर कोई पत्थर फेंकेंगे वो तैरने लगेगा, डूबे जाएंगे। तो वही श्राप वरदान के रूप में आ गया। जब बड़े बड़े तो कहे कि नल नील है काम करेंगे, बाकी आपका प्रताप से बड़े बड़े पहाड़ पहाड़ क्या होंगे, ये सब तैरेंगे प्रभु, आप जो है शुरू कर दीजिए, पुल का निर्माण शुरू कर दीजिए। तब जो है पुल का निर्माण शुरू हो गया। अब हनुमान जी गए बड़े बड़े पहाड़ सब लाने लगे, अब पहाड़ तो आ रहा है लेकिन फिक्स नहीं हो पा रहा है, अर्थात एक पहाड़ डालो उधर पहुंच जाता है, दूसरा रुक नहीं रहा था। तो जामद ने राय दी कि एक पहाड़ पर राह लिखिए और दूसरे मल के अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे हुआ, जामंत ने कहा कि ऐसे करिए अपने आप जुड़ने लगा, राम लिखना शुरू किया, सब पहाड़ पत्थर जुड़ने लगे। फिर भगवान खड़े होकर के देख रहे थे, लक्ष्मण भी देख रहे थे, जामंत भी सजात कर रहे थे। तो जामंत को भगवान कहते हैं कि जामंत एक पहाड़ एक पत्थर मुझे भी दे दो, मैं भी इसको क्या करूं डाल दूं। तो जामंत एक पत्थर लाए और भगवान को दिया, अब भगवान उसको क्या के समुद्र में डाल दिया। तो बड़ी देर तक भगवान देखते रहे, ऊपर आए नहीं। तो जामुन से कहा कि जामुन में क्या हो गए, ये जितने हमारी सेना है ये पत्थर डाल रही है वो तैर रही है, लेकिन मैंने जो पत्थर डाला वो तो ऊपर आ गए नहीं, तैरना तो दूर रहा ऊपर आए नहीं। तो जामुन ने कहा कि हे प्रभु जिसको आप ही छोड़ गए तो कैसे तैरेगा, वो तो बेचारा डूबेगा ही डूबेगा, हेलो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो भगवान मुस्कुराए और उसी समय एक गिलहरी जो है वो भी बिजी थी, बड़ी व्यस्त थी, तो हनुमान जी ने उसको बहुत डांटा कि खामखा तुम्हारे पांव के नीचे आ जाएगी दब के मर जाएगी, और तुम्हारे बाल के कण डालने से ये पुल नहीं बनने वाला है। तो कितने लोगों ने गिलहरी देखी है, नहीं देखना तो यहां देखिए हमारे मंदिर संग बहुत गिलहरियां रहती हैं, क्योंकि जहां वृक्ष हो वहां गिलहरी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वृक्ष है तो गिलहरी जरूर होगी। तो गिलहरी को भगवान ने बुलाया, ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा इसमें, तो हनुमान जी को बुलाया, भगवान राम ने क्या किया, हनुमान जी को बुलाया और गिलहरी को बुलाया। अब गिलहरी जानते कैसे खड़ी होती है, खड़ी होती गिलहरी कितने लोगों ने देखा, जो गांव के लोग होते हैं देखे, गिलहरिया जो खड़ी होती है तो उनके चार पैर होते हैं, अपन की पूछ लंबी होती है, तो अपना जो पूछ होती है स्ट्रेट करके दो पैर खड़ी जाती है, दो पैर से उठा लेती है, ऐसे से देखती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये सब भगवान की बनाई सृष्टि है। आप देखिए भगवान कितने दिमाग से हर चीज बनाते थे, गिलहरी बना दिया गिलहरी से, तो भगवान ने क्या किया, ऐसे हाँ बाया हाथ अपना नीचे किया, गिलहरी सर चढ़ गई भगवान के हाथ पे, है ना, बड़ी जल्दी चढ़ती है। अब भगवान के बाएं हाथ पे खड़ी होकर के, ऐसे खड़ी होकर टकटक लगा तभी तो बात करेगी भगवान से, ऐसे बाएं हाथ से अब नजर से नजर के बात हो रही। हनुमान जी खड़े थे, गिलहरी खड़ी है, तो भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी आपको मैंने ज्यादा शक्ति दी है, तो आप पूरी शक्ति से आप सेवा कर रहे हो, इस गिलहरी को मैंने थोड़ी शक्ति दी है, लेकिन ये भी उसी जितनी शक्ति में दिया हूं उसी शक्ति से ये काम कर रही है, तो हमारी दृष्टि में आपकी सेवा और इसकी सेवा दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि यथाशक्ति उसे भक्ति, कि जिसकी जितनी जिसको मैं जितना सेवा दिया हूं उसके अनुरूप वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई भक्त हमारा झाड़ू लगाता है और कोई बड़ा बड़ा डोनेशन ला के ला रहा है, लेकिन भगवान की नजर में दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि हर सेवा क्या है, महत्वपूर्ण है, भगवान भाव से प्रभावित होते हैं और जो शक्ति दिया हुआ उससे प्रभावित होते हैं, तो इसलिए इसको भी सेवा करने दो। फिर भगवान ने क्या किया, क्योंकि बाएं हाथ पर रखे थे, दाहिने हाथ उसके पीठ पे ऐसे फेर दिया और इसकी तीन रेखाएं बन गई, इसीलिए गिलहरी का संस्कृत में क्या नाम दिया है, त्रिरेखनी, संस्कृत में उसका क्या नाम है, त्रिरेखनी, तीन रेखा भगवान राम की उंगलियों के जब उन्हें फेरा था। तो एक गिलहरी छोटी सी सेवा करके अमर हो गई, तो अगर आप सेवा करेंगे तो क्या अमर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी ने प्रभु की सेवा करके आज अमर हो गए हैं और पूरे दुनिया में उनकी पूजा हो रही है नॉन स्टॉप। कहते इस काम के राज में सूर नहीं डूब रहा है, जब अमेरिका के भक्त लोग सोते रहते हैं तो हम लोग खड़े होकर प्रचार करते हैं, जब हम लोग सो जाते हैं तो अमेरिकन लोग नाच कीर्तन करने से कि हर जगह प्रभु का प्रचार प्रसार हो रहा है इस कान के माध्यम से। प्रभुपाद जी की पूजा आरती हमेशा चल रही है, सोचें दिन और रात चल रहा है, तो प्रभु की सेवा करेंगे अमर हो जाएंगे। लेकिन एक शुद्ध भाव सुनना चाहिए, तो आज रामनवमी है, रामनवमी के दिन भगवान राम से यही प्रार्थना करती है कि भगवान का जो आशीर्वाद है, कृपा मिले, जो उनका संदेश है, जो आचरण है, जिस लिए वो इस पृथ्वी पर आए, थोड़ा सा वो गुण हमारे अंदर आए, ताकि हम भी हमारा भी जीवन थोड़ा आदर्श में बने और मेरी वजह से हमारे परिवार के लोग और समाज के लोग और देश के लोग क्या करें, सुखी रहें, हमारे वजह से किसी को कष्ट न हो, ऐसा हम सोचें। हरे कृष्ण, क्योंकि यही सोच भगवान राम की थी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, क्योंकि आज 10:30 बजे माँ अभिषेक होगा, आप लोग चल रहे ना, हमें बहुत ब्राह्मण भक्तों की जरूरत है कि तीनों आल्टर में माँ अभिषेक होगा, तो हमारी गाड़ी भी है, उसमें अगर भक्त लोग चलना चाहें चल सकते हैं। आप लोग सभाई स्वागत है आपका बड़े मंदिर में राम दरबार में, और चल करके पूरा आनंद उठाए। हरे कृष्ण। राम महोत्सव की, सीताराम भक्त हनुमान जी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की।